हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 12। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञातमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय। अध्याय 12 श्लोक नंबर 12। इन अत्यंत ही अद्भुत शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। भगवान कहते हैं, श्रीयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानम् विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागच्छन्ति अनन्तरम्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यास ज्ञानाध्यानम् विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागम् त्यागच्छन्ति अनन्तरम्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा ज्ञानाध्यानम् विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागच्छन्ति अनन्तरम्। शब्दात् श्रेय यानी श्रेष्ठ है निश्चय ही ज्ञान यानी ज्ञान अभ्यासाच अभ्यास से, ज्ञानात् ज्ञान से, ध्यानम ध्यान, विशिष्यते विशिष्ट समझा जाता है, ध्यानात् यानी ध्यान से, कर्म फल त्याग यानी समस्त कर्मों के फलों का परित्याग, त्यागात् ऐसे त्याग से शांति शांति अनंतरम यानी तत्पश्चात। अनुवाद, यदि तुम यह अभ्यास भी नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशूलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है और श्रील प्रभुपाद जी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझने का प्रयास करेंगे। कृपया ध्यान से इस तात्पर्य को देखिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है कि भक्ति के दो प्रकार है, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम से की आसक्ति से पूर्ण। पहले भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया कि सबसे ज्यादा तो मुझे वही भक्त प्रिय लगता है जिसका मन सदैव मुझ में लगा रहा। जैसे मय्यैव मन आदत्सो मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्यैव अत ऊर्ध्वम न संशय। जो श्लोक नंबर 8 है ना, वो भक्ति की पराकाष्ठा है। क्या है? मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर कर दो। एक क्षण के लिए भी आपके मन में कृष्ण के अतिरिक्त तो और कोई इच्छा या और कोई बात नहीं आए, बस कृष्ण के अंदर मन टिका हुआ हो। बुद्धि यदि कुछ विचार करे तो केवल यही करे कि मैं कैसे कृष्ण को प्रसन्न करूं। लेकिन क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं, तो हमारी बुद्धि में बहुत सारे भौतिक विचार भी आते हैं, जिसके कारण हम इस श्लोक के ऊपर पूरे नहीं उतरते हैं। तो वैसे तो ये जो रागानुगा भक्ति, देखो यहाँ श्री प्रभुपाद जी दो भक्तियों के बारे में बता रहे हैं, एक तो वैधि भक्ति है और दूसरी रागानुगा भक्ति है। तो क्योंकि हम लोग वैधि भक्ति के लिए ही राइट, हमारे लिए सही रास्ता है, क्योंकि मन को पूर्ण रूपेण गोपियों की तरह भगवान के अंदर स्थित कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। इसीलिए हमारे लिए रागानुगा नहीं बल्कि वैधि भक्ति जो है वो रिकमेंड करते हैं जितने भी हमारे आचार्य हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया कि भक्ति के दो प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं उनके लिए, अब देखो ये जो है ना, अब यहाँ पर जो श्लोक बताया जा रहा है वो इन सारे नियमों को पालन नहीं कर सकते। कौन कौन से नियमों को? जैसे भगवान ने हमें बताया कि सबसे पहले क्या करो, मई एवं मना आदर्श मई बुद्धि मन निवेश है, अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, अच्छा चित्तम समाधा तुम न शक्नो भी मई श्रम अभ्यास योग्य, फिर आप अभ्यास करो। यदि अभ्यास योग्य भी नहीं कर सकते तो क्या करो, मदर्थम अपि कर्मण कुरुवन सिद्धिम नवाब। मत भगवान ने फिर कहा कि यदि विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। अगर तुम मेरे लिए कर्म करने का भी प्रयत्न नहीं कर सकते हो तो ऐसा करो, अपने कर्मों के फलों को त्याग करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। लेकिन अगर तुम इन सारी चीजों में से कुछ भी नहीं कर सकते हो तो भी भगवान, ये भगवान की करुणा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप चाहे कैसे, मनुष्य तो ओके, अगर आप पशु स्थिति में भी चले जाओगे ना तो भी भगवान कभी हमारा बहिष्कार नहीं करेंगे, हमें कभी ये नहीं कहेंगे कि अब तुम जानवर बन गए हो, अब तुम्हारा मुझसे कोई संबंध निर्माण नहीं हो सकता। भगवान साफ कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास है। तो ठीक है, श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना ठीक है। ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उनको पता चलेगा क्या कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा परमात्मा का अंश है। इस भौतिक जगत में पता के विषय में पता चलेगा, हमारा भौतिक जगत के साथ कोई संबंध नहीं उसके बारे में पता चलेगा, तो ज्ञान प्राप्त करने में लग जाए। क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ हो सकता है। आपकी वास्तविक स्थिति जब तक आपको पता नहीं चलेगी तब तक तो आप पशु स्तर पर ही काम करोगे। पशु क्या करते हैं? आर निद्रा भाई मैथुन। और मनुष्य को यदि ज्ञान नहीं है तो वो यही कार्य करेगा, लेकिन जब ज्ञान उसे प्राप्त होगा तो उसे वास्तविक स्थिति समझ में आएगी और यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है। फिर ज्ञान से जब आप आगे बढ़ोगे तो आप ध्यान करोगे और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विद्याएं हैं जिनसे मनुष्य अपने को परब्रह्म मान बैठता है। और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का उद्देश्य आदेश है, जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आप ज्ञान प्राप्त करोगे ना तो आपका पुनः स्वतः ध्यान में आप परिवर्तित हो जाए, वो ज्ञान जो है वो आपको ध्यान करने पर विवश कर देगा। जैसे अब इसको हम कैसे समझेंगे कि ज्यादातर लोग जो इस भौतिक जगत में है ना, वो केवल कर्म करते हैं। कर्म क्या करते हैं? बस मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे मुझे कुछ लाभ प्राप्त हो, और लाभ प्राप्त करने के बाद मैं धन कमाने के बाद मैं उस धन को अपनी इंद्र तृप्ति के लिए ईटिंग, मीटिंग और स्लीपिंग और डिफेंडिंग, आहार निद्रा बाई मैथुन, इन चीजों में अपने उस धन को यूज करूं। बस उनका जीवन का और कोई भी मकसद नहीं है। ये पशु स्थिति है। उनको पता ही नहीं है कि हम यदि मनुष्य बने हैं तो हमें क्या करना चाहिए। बस उनके जीवन का मकसद केवल इतना है कि कमाओ 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 कमाओ, उसके बाद उस कमाई से किस तरह से आपको आनंद प्राप्त करना है। लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा, मनुष्य की स्थिति पर आना पड़ेगा। और ये जो आज भगवान जो हमें श्लोक बता रहे ना, वो पशु स्तर से ऊपर किस तरह से बढ़कर भगवत प्रेम तक आया जाता है उसके विषय में बता रहे हैं। जैसा कि अगर आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कुछ न कुछ जिज्ञासा करो, शास्त्रों को पढ़ो। शास्त्रों को पढ़ेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे तो फिर क्या होगा? जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो फिर आप कर्म कांड, ये जो कर्म योग है ना, साधारण कर्म को छोड़ दोगे और कर्म कांड में होगे। कर्म कांड क्या होता है कि अभी ये जो पहले तो मैं ऐसे ही कार्य कर रहा था, लेकिन अभी मैं वेदों के अनुसार कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए कुछ सेवा करूंगा। जैसे आप धन प्राप्त करने के लिए कोई भक्ति करते हो, मतलब कुछ ना कुछ, सुबह उठो, सूर्य को जल दो, या फिर किसी तरह से मंदिर में जाओ, दर्शन करो, प्रणाम करो। भगवान से कोई संबंध नहीं निर्माण किया, लेकिन फिर भी कर्म कांड में जो दैवी शक्तियां जैसे देवता हैं इत्यादि हैं, उनसे कुछ मांगना, ठीक है? तो फिर क्या है, डायरेक्ट से खाली जो खाली कमाता है खाता है उससे तो फिर भी अच्छा है, किसी न किसी की तो भक्ति कर रहा है, वो भक्ति में लगा है, ठीक है? वो कर्म कांड है जिससे आप कुछ करते हो और उसकी बदले में आपको कुछ न कुछ मिलता है और आप संतुष्ट रहते हो कि किसी न किसी देवता के भक्ति विभाग में आप कर रहे हो। और इस तरह से जब आप भक्ति करते हो तो फिर मतलब ऐसा होता है, करते करते आपकी सुकृति जो है वो उदय होती है, और आपको जैसे आप मंदिर में कहीं कभी जो आचार्य हैं जहां पर आप कथा सुनने गए हो, तो वहां पर आपको कभी सुनने को मिलता है कि हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि अब तक तो मैं इच्छाएं पूरी करने के लिए भगवान के पास आता था, तो अभी मैं क्या करूंगा, कुछ न कुछ भगवान के लिए सेक्रीफाई करूंगा। कुछ अब भगवान के साथ आपका कोई संबंध नहीं है फिलहाल, आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि क्योंकि मुझे ये शरीर भगवान ने दिया, मुझे धन भगवान ने दिया, मुझे घर भगवान ने दिया, ये सब भगवान की देन है, तो मुझे भगवान के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए आप कुछ जैसे धन कमाते हो, फिर उससे भले कुछ मांगते नहीं हो, वो आप अपने धन को किसी अच्छे मतलब अच्छे पर्पज यानी किसी मंदिर में दे देते हो या फिर अच्छे देव जो भक्त होते भगवान के उनकी सेवा में दे देते हो कि चलो ठीक है तो मैं अपने धन का कुछ हिस्सा जो है वो भगवान के लिए देता हूँ, उसको बोलते कर्म योग। आप कर्म कर रहे हो लेकिन आपने संबंध जोड़ा है भगवान, लेकिन ये सकाम कर्म योग होता है क्योंकि इच्छा मन में भाव क्या होता है कि क्योंकि मुझे भगवान ने ही सब कुछ दिया है इसलिए मुझे कुछ परसेंट भगवान को देना है, है ना। अब देखो जैसे किसी आप कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी का रूल क्या होता है कि अगर आपकी मेहनत से कंपनी को 1,00,000 रुपए का फायदा होता है तो उसमें से आपको 50,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी, यानी कि आप कितना कमा रहे हो, बाकी तो कंपनी को भी तो मिलेगा। तो आप जिसको जिसके लिए काम कर रहे हो उसने ये रूल रखा है कि आप अपनी मेहनत से जितना कमाओगे उसका 50% मैं रखूंगा, 50% आप रखोगे। तो इस तरह से ये सकाम कर्म योग होता है, ठीक। लेकिन इससे क्या होगा, इससे आप आगे कैसे बढ़ोगे कि सकाम कर्म जिसके लिए आप अपने धन को दे जिसके लिए दे रहे हो जिसके लिए आप कार्य कर रहे हो तो एक दिन आपके मन में ऐसा आएगा कि जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ वो दिखता कैसा है, है ना। खुद ब खुद आपके मन में ऐसा आएगा कि जिसको मैं अपने कार्य का फल दे रहा हूँ भले ही मैं संतुष्ट हूँ, यहाँ पर मुझे सब कुछ मिल रहा है, जो जिस फैक्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा बोनाफाइड तरीके से सारे एम्प्लॉयज को वहाँ पर रख रहे हैं बॉस, लेकिन वो बॉस दिखते कैसे हैं, मुझे उनको देखने की इच्छा है, मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ उसके विषय में पहले तो मैं ज्ञान प्राप्त करूं कि वो कौन है। हाँ, यहाँ से ही शुरू हो रहा है ज्ञानम अभ्यासम, ठीक है। पहले वो कर्म कांड से सकाम कर्म योग तक आया और सकाम कर्म योग तक जब वो आएगा तो फिर डेफिनेटली उसको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होगी कि आखिर वो है कौन जिसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ, उस मतलब उसका क्या है, उसने क्या क्या किया है और उसके कितनी फैक्ट्रीज हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं, कितने एंटरप्राइजेज हैं जो है, मतलब कुछ न कुछ ज्ञान मुझे उसके विषय में प्राप्त करना है, ठीक है। तो कर्म योग से वो ज्ञान योग तक खुद ब खुद आएगा क्योंकि उसको जानने की इच्छा, ये नेचुरल है। ये नेचुरल मैं कैसे बता रही हूँ कि जो कर्म योग पर आएगा, सकाम कर्म योग पर आएगा, वो अवश्य ज्ञान के लिए आगे बढ़ेगा, ठीक। और जब उनके बारे में जब सब कुछ जानने की इच्छा होगी तो जब जान लेगा उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये इनका जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ वो ऐसे हैं, उनके बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, बहुत सारे एंटरप्राइजेस हैं, ऐसे वो अच्छे तरीके से सारा अपना कारोबार कर रहे हैं। जब उनके विषय में आपने जान लिया, जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो दूसरा आपके मन में क्या इच्छा होगी कि आई वॉन्ट्स टू सी, मैं उसको देखना चाह रहा हूँ फॉर होम आई वर्क, कि जिसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ मैं एक बार उसको देखना चाहता हूँ। जैसे आप नॉर्मली अगर कोई कोई फैक्ट्रीज में बड़े फैक्ट्रीज में जो बॉस होते हैं ना वो आते नहीं है, वो बस अपने चला रहे होते हैं काम को, उनके एम्प्लॉयज चला रहे होते हैं, वर्कर्स चला रहे होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज ने अपने बॉस को देखा नहीं होता है, लेकिन जो बॉस के वो सेवा कर रहे हैं, जिनके लिए वो कार्य कर रहे हैं, हृदय में एक इच्छा जरूर होती है कि मैं अपने बॉस को कभी देखूं, है ना, इच्छा होगी। तो इच्छा, वो इच्छा से क्या होगा, ज्ञान योग से वो ध्यान योग में आएगा, है ना, कि मैं ध्यान करूंगा। ये योगा लैडर है, इसको योगा की सीढ़ी कहा जाता है। तो ज्ञान योग से वो ध्यान योग में आएगा। ध्यान में क्या किया जाता है, पश्यन्ति यम योगिनो ध्यानावस्थित तद गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, फिर वो हृदय में उसको ध्यान करने की कोशिश करेगा कि वो कैसा होगा, दिखने में कैसा है। तो वो ज्ञान योग से ध्यान योग तक आता है और जब वो ध्यान योग तक पहुंच जाता है फिर उसे ऐसा मतलब जब उसको पता चल जाता है कि हाँ ये ऐसा है और वो ध्यान करने लगता है, तब उसे अगर कभी ऐसा लगे कि वो है मेरा बॉस और उसको देखे कभी कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिसके साथ वो बात करता है, जिसके साथ वो शेकेन करता है, एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाता है, जिसके साथ वो समय बिताता है। तो जब आपने उसको ध्यान में देख लिया है, अब आपको पता चल गया कि वो कौन है, वो कितना सुंदर है, कितना हैंडसम है, उसका लाइफस्टाइल कितना अच्छा है, उसका वे कितना अच्छा है बात करने का, कितनी अच्छी ड्रेस पहनता है, कितना अच्छा है जिसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ, तो वो लोग जो उसके साथ रहते हैं उनको कितना अच्छा लगता होगा कभी मुझे भी मौका मिले कि मैं भी उनके साथ चेक इन करूँ, उनके साथ बैठूँ, उनके साथ कुछ टाइम बिताऊँ। हाँ, कभी ऐसा होता है ना, जैसे नॉर्मली लाइफ में ऐसा होता है कि हम जिसके लिए कार्य करते हैं उसके विषय में जानना चाहते हैं और उसको देखना चाहते हैं, और जब देख लेते हैं तो उससे मिलना चाहते हैं। तो जब हम देखते हैं कि जो ध्यान में ध्यान योगी होते हैं, फिर उनको जब पता चलता है कि ये वो भगवान है और भक्त के साथ देखो इनका कैसा संबंध होता है, तो हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी कृष्ण के साथ अपने संबंध को भक्ति योग में परिवर्तित कर लें। तो क्योंकि भक्ति योग में क्या है, भगवान जो है वो बिक जाते हैं उसके अपने भक्त के हाथों बिक जाते हैं, फिर भक्त अपनी मर्जी से चलाता है भगवान को। भगवान को क्या जरूरत है, अभी देखो ये कृष्ण है, सब योगी जन जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है, वो फिर योग साधना करते हैं, और वही कृष्ण जो उसकी भक्ति करता है उसका ड्राइवर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ड्राइवर बनना, हालांकि देखो कितना चीप काम है ना, कोई साधारण हमारे जैसा व्यक्ति होगा वो भी बोलेगा ड्राइविंग वाला काम मैं नहीं करूंगा, ये तो बहुत लो कैटेगरी के लोगों का है। लेकिन भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार है। अपने जो भक्त होते हैं नंद बाबा के, वो जूते सर पे उठा के लेके आते हैं, ये भगवान है, त्रिलोकी के नाथ है। यशोदा मैया के हाथों वंदना स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर ऐसे क्या होता है, ध्यान करने वालों से फिर उनको ऐसा लगता है कि मुझे भगवान के साथ संबंध जोड़ना है। तो ये क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप एक योगा लेडर बताया जा रहा है। क्या है, पहले कर्मकांड है, फिर कर्मयोग है, फिर ज्ञान है, फिर ध्यान योग है, फिर भक्ति योग है, ऐसे बताया जा रहा है यहाँ पर, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में देखा। एक बार फिर देखिए, यही ज्ञान, सॉरी, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। किन के लिए, जो भक्ति योग के कृष्ण भावनामृत को नियमों का पालन नहीं कर सकते उनके लिए ज्ञान योग का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ हो जाता है। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है, और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विद्याएं हैं जिनसे मनुष्य अपने को परब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। अब देखो, हम लोगों ने श्लोक नंबर 9.15 में पढ़ा था कि एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, इसमें तीन स्टेप बताए थे। एकत्वेन, जो अपने आप को भगवान समझते हैं, पृथक्त्वेन, जो दूसरों देवी देवताओं को भगवान समझते हैं, बहुधा, बहुधा यानी बहुत सारे देवी देवताओं को, कभी कोई मनुष्यों को, कोई ना पीरों फकीरों को भगवान समझते हैं, और बहुधा विश्वतो मुखम, और तीसरे वो होते हैं जो विश्वरूप को भगवान समझते हैं। तो इसमें क्या था, एकत्वेन यानी जो अपने आप को भगवान समझते हैं वो सबसे निचले दर्जे के, श्रील प्रभुपाद जी ने बताया था, क्योंकि वो तो अपने आप को ही भगवान समझते हैं ना, उनके अंदर सरेंडर करने का कि मुझे किसी की सेवा करनी है, सेवा भाव तो उत्पन्न होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि ठीक है, अगर उनको कृष्ण भावनामृत के अनुष्ठान करने में रुचि नहीं है, अगर वो नहीं समझना चाहते हैं, तो ऐसी भी विद्याएं हैं जिनसे मनुष्य अपने को परब्रह्म समझ बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान करना भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता है तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्य के आदेश हैं, जिससे हम श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम जब चैप्टर आएगा उसमें क्या लिखा होगा कि ब्राह्मण को कैसे कार्य करने चाहिए और क्षत्रिय को कैसे कार्य करने चाहिए, और शूद्र को वैश्य को किस तरह से कार्य करने चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यों को अच्छे तरीके से करके अपना जो स्वधर्म है उस धर्म को, इस शरीर का जो धर्म है उसको सही तरह से निभाने के बाद क्या होगा, जब वो अच्छे तरीके से अपने कर्तव्यों को निभाएगा तो धीरे धीरे प्रगति करेगा और फिर कर्म योग तक पहुंचेगा, कर्म योग से फिर ज्ञान योग तक, ज्ञान योग से फिर ध्यान योग तक, ध्यान योग से फिर भक्ति योग तक। क्योंकि वो डायरेक्ट से भक्ति योग को स्वीकार नहीं कर रहा है तो क्रमशः आगे आना पड़ेगा। तो लेकिन श्री प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक दिशा में मनुष्य को अपने कर्मफल को त्याग करना पड़ेगा, जिसका अर्थ है कर्मफल को किसी अच्छे कार्य में लगाना, कि सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति उसके जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। वो भले कोई भी अपने अगर कर्तव्यों को पूरा कर रहा है, अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ है तो उसके अनुसार भी यदि कार्य कर रहा है तो भी अपने कर्तव्यों को पूरा करना पड़ेगा उसको, और कर्तव्यों को पूरा करके जो फल प्राप्त होगा वो भगवान को या किसी अच्छे, भले वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है लेकिन अच्छे काज के लिए, यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने साफ साफ लिखा है कि किसी अच्छे कार्य में उसको अपने कर्मों का फल लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर संक्षिप्त में श्री प्रभुपाद जी पूरा बताएंगे, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने के दो विधियां हैं, एक विधि है क्रमिक विकास की और दूसरी प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, एक विधि है क्रमिक विकास। क्रमिक विकास क्या है कि सबसे पहले आप कर्म करो, फिर कर्म के बाद कर्म कांड में आओ, कर्म कांड के बाद कर्म योग में आओ, कर्म योग से ज्ञान योग में, ज्ञान योग से ध्यान योग में, ध्यान योग से भक्ति योग में। ये क्रमिक विकास है, स्टेप बाय स्टेप भगवान के पास आना। और दूसरे क्या है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट से भगवान के साथ संबंध जोड़ना। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अभी आप कृष्ण भावनामृत में आने के बाद भले आपको ज्ञान योग के विषय में कुछ नहीं पता, आपको ध्यान करना नहीं आता है, आप कर्म योग के विषय में कुछ नहीं जानते, केवल क्या करना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स चेंज ऑफ द कॉन्शियसनेस, आपको अपनी बुद्धि को चेंज करना है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटीज कर रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, अगर मैं ऑफिस जाता हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, अगर मैं स्कूल जाता हूँ तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, मैं घर में रहता हूँ घर में कार्य करता हूँ तो भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये प्रत्येक विधि है क्योंकि हम जानते हैं कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के दास हैं। कृष्ण भावना कॉन्शियस, कृष्ण कॉन्शियसनेस शुरू उस जगह से होती है जिस जगह से हम अपने आप को भगवान का दास समझना स्वीकार करते हैं। दास समझ लिया फिर बस दास को भले ज्यादा उसके पास कोई ज्यादा एजुकेशन भी नहीं हो, उसके अंदर भले ज्यादा काबिलियत नहीं हो, वो जिसका दास है ना उसका मालिक सभी खुद ही करने वाला है। क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस में आप अपनी सारी जिम्मेदारी भगवान को सौंप लेते हो तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम लोग कुछ नहीं मेहनत करते, हम श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के आदेशों का पालन करते हैं और भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं, भगवान को दिया हुआ जो भोग अर्पण करते हैं उसको खाते हैं और 16 माला जप करते हैं। हम ध्यान नहीं करते, ध्यान करना जो है वो योगियों का काम है। ज्ञान योगी जो होते हैं वो फिलोसोफर होते हैं, बड़े बड़े दार्शनिक होते हैं, बहुत सारे किताबों में पढ़ते हैं कि कैसे भगवान जो है वो कण कण में बैठे हुए हैं, क्या कर हर एक चीज के बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं। ये क्रमिक विधि है, क्रमिक है मतलब स्टेप बाय स्टेप आप भगवान के पास आओगे। लेकिन कृष्ण भावनामृत में भक्ति जो है वो प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधियों में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करता है। आपको दूसरी जो विधियां हैं उनमें क्या करना पड़ेगा, कर्मों के फल का त्याग करना पड़ेगा तभी मनुष्य ज्ञान की, उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था आती है। क्या आती है, सबसे पहले आप अपने कर्मों का त्याग करोगे, कर्म फलों का त्याग करोगे, उसके बाद ज्ञान अवस्था आएगी कि मैं भगवान को जानना चाहता हूँ, जानोगे भगवान को, उसके बाद ध्यान यानी भगवान का ध्यान करोगे और फिर परमात्मा बोध। ध्यान में आपको क्या याद आएगा कि हृदय में जो परमात्मा बैठा हुआ है वही भगवान है, और परमात्मा बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है कि वो परमात्मा आखिर है कौन, वास्तव में वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है, या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है। यानी कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान जो है वो आपको कोई भी बाय फोर्स नहीं कहेगा कि आप डायरेक्ट से मेरे पास आओ या आप स्टेप बाय स्टेप, आपकी अपनी स्थिति है ना, आप अपने आप को कौन से स्टेप पे खड़ा हुआ देख रहे हो। अगर आप उस स्टेप, किसी भी स्टेप पे हो, आप भक्ति को आप स्वीकार कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भक्ति करने के लिए आपको सारे स्टेप्स को क्रॉस करना पड़ेगा। भक्ति तो एक लिफ्ट की तरह है, आप कौन से स्टेप पे खड़े हो बस वहां पर ही आपको जहां पर जो गंतव्य है। कैसे है, जैसे एक फाइव स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें 5 फ्लोर है। पहला फ्लोर कर्मकांड है, दूसरा फ्लोर कर्मयोग है, तीसरा फ्लोर ज्ञान योग है, चौथा ध्यान योग और पांचवा भक्ति योग। अब आपकी मर्जी है कि आप स्टेप से जाना चाहते हो या लिफ्ट में बैठकर डायरेक्ट से भक्ति की विधि विधानों का पालन करना चाहते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करना चाहते हो। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से जाना पसंद करते हो। क्योंकि आगे श्री प्रभुपाद जी एक बहुत ही खास बात बताने वाले हैं, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ श्री प्रभुपाद, मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ सकता है और बढ़ने की विधि को अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है। लेकिन ये जो लेकिन है ना, उसके बाद जो श्री प्रभुपाद जी ने बात बताई है उसको हमें ध्यान से समझना है, ठीक। लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। डायरेक्ट से भगवान कृष्ण को सर्व कारण कारण समझकर अपना सब कुछ समर्पित करना, भगवान के लिए अपने जीवन को न्योछावर करना, मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं, इसके अतिरिक्त मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। ये जो प्रत्यक्ष विधि है ना, जिसमें भक्त 100% समर्पित करता है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, लेकिन यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि अर्जुन के लिए प्रत्यक्ष विधि नहीं सुनाई। अभी देखो, प्रत्यक्ष विधि सबके लिए संभव नहीं है, ये केवल श्री प्रभुपाद जी ने कह रहे हैं। हम पहले पढ़ चुके, भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे। सिद्धे मतलब कोई एक ऐसा होता है हजारों में जो सिद्धि के रास्ते की ओर जाता है, जो परफेक्शन के रास्ते की ओर जाना चाहता है, जिसके मन में ये विचार आता है कि आहार निद्रा भय मैथुन जो है वो जीवन का लक्ष्य नहीं है, परफेक्शन कुछ और है, तो वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद भी वो कहीं पर अटक जाता है। हो सकता है वो देवताओं को अपने जीवन का मकसद समझ के स्वर्ग जाने के लिए कोशिश करें और देवताओं की पूजा करें, या वो ब्रह्मलोक को अपने आप को आत्मा समझकर तदात्म्य होना चाहे और ब्रह्मलोक को प्राप्त करना चाहे। तो जरूरी नहीं है कि जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं वो भी वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ सके। इसे भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे। हजारों में से कोई तो सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करता है, और यततम अपि सिद्धानां, उन सिद्धि प्राप्त करने वालों में से जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, तद कश्चित् माम वेति तत्व, तो मुझे तो फिर भी वो नहीं जान सकते, सब उनमें से कोई एक होगा जो मुझे जानेगा। तो जो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना, ये जो डायरेक्ट से प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, भगवान की कथाओं का श्रवण करो, भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर दो, भगवान को अर्पण किया हुआ भोजन खाओ, भगवान का श्रृंगार करो, भगवान की पूजा करो, भगवान की आरती करो, कृष्ण को सर्वस्व मानो, ये डायरेक्ट प्रोसेस है। लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं होता है, इसीलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं आप ये उम्मीद मत करो कि हर राह चलते को आप कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकते हो। जो भी रास्ते में मिले बस आप उसको बता दो कृष्ण भक्ति के ये लाभ है, आप कृष्ण भक्त बन जाओ, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो स्वीकार करेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी ये स्थिति नहीं है। कृष्ण भक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण 7.28 में तो यहाँ तक कहते हैं ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद मोह निर्मुक्तो भजन्ते माम दृढ़व्रता, कि मेरी जो दृढ़व्रत की जो भक्ति है उसको करने के लिए तो तुम्हारे हृदय के अंदर सारे जितने अपराध हैं पहले उनको खत्म करना पड़ेगा, द्वंद्वों से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। द्वंद्व कि मैं भगवान को, भगवान ने जो कुछ ये संसार में बनाया वो अच्छा है, उससे ईर्ष्या, उससे द्वेष, ये सब सब द्वंद्व खत्म करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम दृढ़ भक्ति कर सकते हैं। इसी बात को यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं। अतः प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है, अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर यह समझ लेना चाहिए कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुनाई गई, क्योंकि वह पहले से ही परमेश्वर का प्रति परमेश्वर के प्रति प्रेम भक्ति की अवस्था को प्राप्त था। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए तो त्याग, पहले क्या करना है, उसको त्याग करना है, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग तथा परमात्मा योग, उसके बाद एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनीय है। लेकिन यहाँ तक श्रीमद् भगवद गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में सदैव भगवान ने ये कहा कि आपको क्या करना है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम श्रम व्रज, सब छोड़ो, ये सब ज्ञान योग ध्यान योग सकले विषयर बांड है ना, कर्म कांड ज्ञान कांड सकले विषयर बांड, ये सब कर्म कांड में फंस जाओगे तो ये भी विषैला है, आपको ढंक मारेगा और कर्म के जो फल हैं उसके अंदर आसक्त करेगा। और ध्यान कांड क्या है, उसमें भी आप ज्ञान कांड में भी आप है ना वो करोगे, निराकार की ओर जाने के लिए हृदय के अंदर इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, तो ये सब विषय रबांड, ये सब जहरीले बर्तन है। इसीलिए क्या करो, आपको भगवान की प्रेम भक्ति, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, भगवान मन में भगवान का स्मरण करना, भगवान को प्रणाम करना, जो हमारे गुरु महाराज ने हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं उनको स्वीकार करना, और भगवान से अपने प्रेम को हृदय में जो है ना इंक्रीज करने के लिए भक्तों का संग करना, तो ये प्रत्यक्ष विधि है और ये बहुत सरल है। इसी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन के लिए वो अप्रत्यक्ष वाली विधि नहीं बताई गई, क्योंकि वह पहले से ही परमेश्वर के प्रेम भक्ति की अवस्था में था। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है, लेकिन उनके लिए तो त्याग ज्ञान ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधियां ही पालन है। लेकिन जहां तक श्रीमद् भगवद गीता का संबंध है, उसमें प्रत्यक्ष विधि ही पर बल दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने के लिए सलाह दी जाती है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर सलाह दे रहे हैं कि जब इतना सरल है कि आप लिफ्ट में बैठकर आसानी से एक बटन दबाकर अपने गोल को पहुंच सकते हो, फिर इतनी सारी सीढ़ियों पर स्टेप बाय स्टेप चढ़ने की क्या जरूरत है ना। ये जो इस श्लोक में भगवान ने बताया है ना, वो ऐसे है, समझो कंक्लूजन बताया भगवान श्री कृष्ण ने। अब तक जो भक्ति की विधियों को, भक्ति के जो हम स्तर को पढ़ते आए ना, जैसे आठ में हमने क्या पढ़ा, भगवान ने कहा मय्येव मन आदस्सो मयि बुद्धि निवेशता निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम् न संशय। अगर आपका मन मुझ में टिक जाए, स्थिर हो जाए, तो फिर क्या होगा, आप फिर आपकी आप अपनी बुद्धि भी उसके अंदर ही लगाओ, मुझे मेरे अंदर ही लगाओ, और इस तरह जब तुम मेरे अंदर स्थित हो जाओगे, अन्य अभिलाषता शून्य हो जाओगे, तो फिर तुम ऊपर उठोगे, फिर मुझ में ही सदैव वास करोगे। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, अभ्यास योगी न तो फिर आपको अभ्यास करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो करना चाहिए। अगर तुम अभ्यास योग भी नहीं कर सकते हो, तो मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्म, तो फिर मेरे लिए कार्य करने की कोशिश करो, और अगर मेरे लिए कार्य करोगे तो तुम पूर्ण अवस्था तक पहुंचोगे। लेकिन अगर तुम मेरे लिए कार्य भी नहीं कर सकते, तो क्या करो, सर्व कर्म फल त्यागम, सारे कर्मों के फल का त्याग कर दो। लेकिन अगर तुम ऐसा भी नहीं कर सकते हो, सारे कर्मों के फल का त्याग, देखो ये अंतिम लाइन में जो सब कर्मों का फल त्याग है उसमें, और यहाँ पर जो भगवान ने लिखा है उसमें डिफरेंस है, ठीक है, अभी वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर भगवान कहते हैं यदि तुम सारे कर्मों के फलों का त्याग भी नहीं कर सकते, तो फिर श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, तो फिर ज्ञान का अनुशीलन करो, और ज्ञान ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से भी ज्यादा बेहतर ये है कि तुम ध्यान करो, है ना। ज्ञान में क्या है, आप सिर्फ यही सोचते रहोगे कि मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है, और है ना मेरा ये भौतिक जगत क्या है, इस ये ज्ञान है। ये सब जब ज्ञान प्राप्त होता है ना, कि सबसे पहले अपने आप को अपने आप के बारे में सोचते हैं कि मैं कौन हूँ और परमात्मा कौन है, ये भौतिक जगत है, बोला इससे बेहतर ध्यान करो जो परमात्मा है उसका। ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते, और ध्यान करने से भी भगवान कहते हैं ध्यानात कर्म फल त्याग, ये अंतिम ये जो कर्म फल त्यागम वो सबसे श्रेष्ठ भगवान ने यहाँ पर बताया। लेकिन यहाँ पर जो कर्म फलम 11 नंबर में बताया गया वो सबसे नीचा स्टेज है, वो भी कर्म फल त्याग है, लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं किया है। वो क्या किया है इसकी ट्रांसलेशन को देखो श्लोक नंबर 11 में, किंतु यदि तुम इस भावनामृत में कर्म करने के समर्थ असमर्थ हो तो अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। उसमें भगवान से प्रेम की बात नहीं है, बस आप अपने कर्मों के फलों का त्याग कर दो किसी अच्छे काम के लिए। लेकिन याद कीजिए हम लोगों ने श्लोक नंबर 6 में जो भक्ति की पराकाष्ठा है, श्लोक नंबर 6 में जो कर्म फल का त्याग पढ़ा था जिसमें भगवान ने कहा था ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा, इसमें जो कर्मों का त्याग है वो किस लिए है, मयि संन्यस्य मेरे लिए, मत्परा। मत्परा का मतलब होता है कि सिर्फ भगवान के अंदर आसक्त होके वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता, अपने सारे कर्मों फल तो भक्त के मन में भी कभी नहीं आता कि मैं कृष्ण के लिए ये सेवा कर रहा हूँ और उसकी बदली में मुझे कुछ अच्छा मिलना चाहिए। भक्त तो यहाँ तक कहता है कि आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टो माम अदर्शनम मर्म हताम करो त्वा यथा तथा वा विद्धा तुलम पट मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा। तुम तो लंपट हो, तुम्हारी मर्जी है, मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ इसलिए आश्लिष्य व पादरताम तुम अपने पैरों से मुझे कुचल दो, भले मैं उफ भी नहीं करूँगा, तुमसे शिकायत नहीं करूँगा, मैं प्रेम करता हूँ तुमसे। आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टो माम अदर्शनम, अदर्शन रह जाओ, भले मुझे दर्शन ना देकर मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दो, और मर्म हताम मेरे मर्म को हत कर दो, जो मेरा तुम्हारे ऊपर अधिकार है भले वो भी सिद्ध ना करो। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा हूँ लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि तुम मेरे बनो। मर्म हताम करो तुआ जथा तथा वा विदला तुलम पटो, तुम्हें जैसी मर्जी आए मेरा मेरे साथ सलूक करो, मैं तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी, मैं तुम्हारा दास हूँ, और वो भी वॉलेंट्री हूँ, मतलब मुझे उसकी बदली में तुमसे कुछ नहीं चाहिए। भक्त जो है वो पूर्ण समर्पित होता है, इसलिए इसको कहते हैं ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा अनन्ये नैव योगेव माम ध्यायन्त उपासते। तो ये जो है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ये जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, मतलब ये भक्ति के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो कर सकते हो सारे, तो क्या करो, ज्ञान का अनुशीलन करो। ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से भी ध्यान ज्यादा श्रेष्ठ है, और ध्यानात कर्म फल त्यागात, और ध्यान से भी ज्यादा जो है वो कर्म फल भगवान के लिए कर्म को समस्त कर्मों के फलों को त्यागना है, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। और इसका कारण क्या है, क्यों श्रेष्ठ है, तो भगवान एक ही लाइन में बताते हैं, एक शब्द में बता देते हैं कि त्यागा शांतिर अनंतराम। अगर इस तरह से तुम अपने समस्त कर्मों के फल मेरी प्रसन्नता के लिए छोड़ दोगे तो इससे तुम्हें अनंतरम शांति मिलेगी। ऐसी शांति मिलेगी, आखिर एक व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है तो उसका रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, उसे आनंद मिलना चाहिए, उसे शांति मिलनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर कहा त्यागा शांति अनंतरम, अनंत शांति मिलेगी आपको, कभी वो शांति जिसका कभी क्षय नहीं होगा। भक्त के पास भले ही कोई भौतिक वस्तु हो या ना हो, भले उसके पास ज्ञान हो या ना हो, उसको ध्यान करना आता हो, कुछ भी नहीं हो उसके पास, धन दौलत मान सम्मान भले उसके पास कुछ भी नहीं हो, यहाँ तक कि हरिदास महाराज जैसे शुद्ध भक्त को 22 बाजारों में कोड़ों से पिटवाया जाए, प्रहलाद जैसे शुद्ध भक्त को भले ही कभी पहाड़ों से फेंकवाया जाए या हाथियों से कुचलवाया जाए, लेकिन भक्त अनंत शांति में, क्योंकि वो हर वक्त भगवान की प्रोटेक्शन में होता है। भगवान योगक्षेमम वहाम्यहम। हम ऐसा लगता है इस श्लोक को पढ़ के कि फिर तो भगवान का भक्त तो फिर दुखी होगा ना कि सारा सब कुछ उसको ही दे दे, बस भगवान सारे कर्मों का फल उसको दे दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा जैसा सुलूक करने का दिल करे तो तुम मुझे मेरे साथ करो। जब भक्त अपना सब कुछ कृष्ण के लिए न्योछावर कर देगा तो कृष्ण के ऊपर उसको इतना भरोसा नहीं होगा, भले ही वो कह रहा है कि तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन वो जिससे प्यार कर रहा है वो कोई पत्थर तो नहीं है, वो साक्षात भगवान है। जिस भगवान के इशारे पर यह सृष्टि चक्र चल रहा है, सृष्टि का कण कण जिसके इशारे पर चल रहा है, तो जो भगवान की भक्ति करेगा, जो भगवान के लिए सब कुछ अपना सौंप देगा, तो क्या भगवान उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? भगवान कहते हैं तुम ऐसा करके तो देखो, त्यागात शांतिर अनंतरम। फिर जो वास्तविक लाभ मिलेगा ना, वो कभी किसी और वस्तु से, न ज्ञान से, न ध्यान से, न कर्म योग से, न कर्म कांड से, किसी से मिल ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी जितने भी प्रोसेस हैं, उनसे कार्य करने के बाद भी आपकी इच्छा यही होती है कि मुझे शांति प्राप्त हो, लेकिन शांति प्राप्त अनंतर शांति प्राप्त नहीं होगी। भले कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लो, आपके हृदय में एक खालीपन रहेगा, क्योंकि वो भगवान का प्रेम नहीं है, आत्मा प्रेम के लिए तरस रही है। कितना ही ध्यान कर लो लेकिन कृष्ण के साथ संबंध नहीं जुड़ा, तो फिर आपको आनंद नहीं आने वाला, शांति प्राप्त नहीं होने वाला, भले कुछ भी कर लो। जब तक आपका कृष्ण के साथ संबंध नहीं जुड़ जाता है, जब तक आप कृष्ण को अपना सब कुछ न्योछावर नहीं कर देते हो, प्रेम नहीं करते हो, तब तक अनंतर शांति प्राप्त नहीं होने वाली है। इसे भगवान कहते हैं अनन्या सिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम इत्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। तुम एक बार अपना सब कुछ मेरे पर निछावर, अनन्या सिंतयन्तो माम, दूसरों को छोड़ो, बाकी सारे मार्गों को छोड़ो, चिंतयन्तो माम, अपने हृदय में केवल मेरा चिंतन करो, और इस तरह से अगर तुम मेरी प्रेमा भक्ति करोगे तो फिर मेरी जिम्मेदारी आगे मैं क्या करूंगा कि तेषाम नित्याभियुक्ताना जो कंटिन्यूस मेरे साथ युक्त रहेंगे योगक्षेमम वहाम्यहम, उसके योगक्षेम का वहन करना मेरी जिम्मेदारी है, उसकी जो आवश्यकता है उसको पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, उसके पास जो है उसको सुरक्षा प्रदान करना मेरी जिम्मेदारी है। भक्त भगवान की जिम्मेदारी बन जाता है, भक्त को संरक्षण प्रदान करना कृष्ण की जिम्मेदारी है, और जब किसी की जिम्मेदारी भगवान उठा लेते हैं, उसको अपने लिए कुछ और करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर श्लोक हमने पढ़ा, जिसमें भगवान बताते हैं कि यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते हो तो ज्ञान का अनुशीलन करो, ज्ञान, लेकिन ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्म फलों का त्याग करना श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। हरे कृष्ण।